السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہم سب کو ایک بار پھر اپنی اصلاح کے لیے اس بات کو سننے کی طرف لے آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کے سیشن سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں اور اس کا حق بھی ادا کریں. شروع کریں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈسکور یور سیلف, اپنی تلاش. سیلف ڈسکوری بھی ہے, پرسنالٹی ڈسکوری بھی ہے, اور میں کون ہوں اس سوال کا جواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بھی پہچان دی اور اس دنیا میں آنے کے مقصد سے بھی آگاہ کیا. بہت سارے لوگ دنیا میں آج کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. ہر ایک کا معیار فرق ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو وہ کچھ بھی کہیں, کوئی اور نام رکھیں, چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا دین کی ہو, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کامیابی اسے لے کر پرسکون زندگی کی طرف ہی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نصیب میں اس ٹاپک میں سے کیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. ذرا سا اپنے ذہن کو بارش کی طرف لائیے اور اس انالوجی کو دیکھیے گا جس میں سے آج ہم اپنے اس ٹریننگ سیشن کا ٹاپک ڈسکور یور سیلف اینڈ بی بینیفیشیل اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا, فصالت اودیتن, پھر اس سے ندی نالے بہ نکلے, بقدریہا, اپنے ظرف کے مطابق, فاحتمل السید زبد الرابیہ. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ کہیں اور بھی ہیں. وہ کیا, ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. اسی طرح کی جھاگ اس وقت بھی اٹھتی ہے جب دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے زیور اور برتن بنانے کے لیے. اور اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اور آخر کیا ہے, یہ حصہ ہے آج آپ کی میری اس نشست کا, فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا, جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 ہم سب کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے کے چل رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں لوگوں کو نفع دے گا وہ ضرور بچے گا, اور بیکار چیزیں گھاس پھونس کی طرح وقت کی رو میں بہ جاتی ہیں. تو آج جس موضوع کو میں اور آپ اپنے لیے سن رہے ہیں وہ کیا ہے, کیا میں دوسروں کو نفع دیتی ہوں؟ صرف اس آیت کے اوپر آپ نظریں جما کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ سکھا دیا ہے کہ جس کے بعد یہ خاکی بندہ, یہ فانی بندہ اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں میں رہتا ہے, لوگوں کی یادوں میں رہتا ہے, لوگ اس کا نام لیتے ہیں. آپ کسی دنیاوی لیڈر کو لے لیجئے تو میموریل ڈے منائے جاتے ہیں ان کے نام پہ. اگر ذرا سا اس کو اپنے انڈو پاک کلچر پہ لے آئیے تو لوگ ایسی شخصیات کی قبریں سجا کر اس پر ان کے نام کے کتبے لگانے لگتے ہیں. اور کچھ نہ کر سکیں تو عام لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ قبروں پر کتبے لگاتے ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ رکھتے ہیں, لیکن چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے. تو یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دی, اس کا سب سے قیمتی کریکٹرسٹک اس دنیا میں, اس یونیورس میں اور اس کائنات میں جو سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز ہے وہ انسان ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا, اور انسان کو ولقد کرمنا بنی آدم کا لقب بھی دیا گیا صورت بنی اسرائیل میں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے اوپر لوں, और आप अपने ऊपर लीजिए। अपनी कदर पहचानती हूँ क्या? हकीकत में मुझे पता है कि मैं कितने की हूँ। कभी कभी तो ये तक देखा गया कि नोट की पहचान है, डॉलर पाउंड का रेट पता है, ये 1 डॉलर है, ये 5 है, ये 10 है, ये 100 है, ये भी पता है। सोने की कीमत भी पता है, असली नकली का फ़र्क भी पता है, और इसी तरह जापानी और कॉपीड कपड़े का फ़र्क भी पता है। लेकिन जो नहीं पता होता अमूमन इंसानों को, वो ये नहीं पता होता कि हम क्या हैं। आज दुनिया में सोशल मीडिया ने फासले ख़त्म कर दिए, दूर की खबरें मौजूद हैं। वेदर चैनल से जाकर पूरी दुनिया का वेदर चेक कर लीजिए, प्रिडिक्शन में जाकर देख लीजिए कि बारिश कब होगी, चांद तक 1 माह पहले से ही देख लेते हैं कि ये अब इस वक्त है, अब इधर है, अब हमारी आंखों की रेंज में आने वाला है। वो कहते हैं ना कि सितारों पे कमंदें तो डाल दी आज के इंसान ने, लेकिन इंसान अपनी हस्ती को कम ही पहचानता है। ये है वो नुक्ता जिस पे आज के दौर में बहुत कम लोग बात करते हैं। हम अपनी सलाहियतें बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या हैं। खैर, देने का जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान के रगो रेशे में डाला हुआ है। आमतौर पे तो इंसान जो खुद को अपने हाथों ही में बेच देते हैं सेल्फ प्लीजर बनकर, वो तो कभी ड्रग्स में चले जाते हैं और कभी शराब के नशे में धोते हैं, और ऐसे लोग बाज़ दफ़ा गटरों में से भी निकाले गए। लेकिन ज़रा सा ऊपर ले चलिए, एक बाशऊर इंसान जो दुनिया का 4 लफ्ज़ पढ़ लेता है, तो उसको फिर फिक्र होती है कि मैं दूसरों को भी कुछ दूँ। और बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे कुतुबी सितारे, कुछ लोग दुनिया में कुतुबी सितारे बन के जीते हैं। ये खुद भी नहीं बल्कि दूसरों को भी राह पे रखते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में ज़िंदगी प्यारी लगने लगती है। ये वो लोग हैं कि जो मोहब्बत के अमीन होते हैं, प्यार बरसाते हैं, और कह लीजिए कि दौलतें दर्द बांटते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो खलूस निछावर करते हैं, कभी इखलास की बातें सिखाते हैं, कभी उसके अमली नमूने बनकर दिखाते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि ये खुद साज से ज़्यादा तारीख साज होते हैं। अल्लाह के भेजे हुए तमाम अम्बिया कराम और रसूल इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप इंसानियत की तारीफ में सबसे ऊपर के इंसान कह सकते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम की जो दुआ मांगी जाती है, तो इनाम याफ्ता लोगों में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है। सूरत निसा में अल्लाह ताला खुद ही कह देते हैं, वमन युति अल्लाह व रसूल अफाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। सबसे ऊपर नाम मिनन नबीजीन ही आता है। मैं और आप उस दर्जे तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो मेरे आपके लिए मुकाम है वो मुकाम सिद्दीकियत है। और सिद्दीकियत से होते होते सालेहियत के दर्जों तक आते आते ये बात समझ में आ जाती है कि खुद जीना तो क्या जीना है, दूसरों के लिए जीना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ देना, ये अजीमत के दर्जे का जीना है। हमारी गुफ्तगू चूँकि आम खवातीन के लिए होती है, हम सभी आम खवातीन हैं, तो आप देखिए कि एक औरत ही को सामने लीजिए कि उसका जीना मरना, 4 बच्चे, शौहर और घर के चंद बुज़ुर्ग हैं। उन्हीं के लिए जीती है और उन्हीं के लिए मरती है, और उन्हीं चीज़ों को सामने रख कर सारा दिन काम करती है। और ये भी बहुत खूबसूरत जीना है, फ़राइज़ की सतह पे है। ऐसी ही ख़वातीन को खुशखबरियाँ भी मिल जाती हैं अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से, कि जे नमाज़, रोज़ा और बुनियादी फ़राइज़ को पूरा करने के साथ साथ अपने शौहर की इताअत कर लेगी, तो जन्नत के जिस दरवाजे में से जाएगी जा सकती है। लेकिन कुछ ख़वातीन और ऑफ कोर्स मर्द तो इससे भी ऊपर हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने ही बच्चों के लिए क्यों जिए, हम दूसरों के बच्चों के लिए क्यों ना जिए, हम दुनिया से जाएं तो सिर्फ 4 बच्चों ही के लिए विरसा क्यों छोड़कर जाएं, हम पूरी इंसानियत के लिए विरसा क्यों ना बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं याद कर लीजिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मांगी थी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनकी मांगी हुई दुआएं कैसे लगाईं कि आज तक कमा सल्लई ताला इब्राहिम और कमा बारक ताला इब्राहिम के लफ्ज़ बोलता है हर मुसलमान जब भी नमाज में वो दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो क्या पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर उनके बिल्कुल करीब के दौर में और उनकी मौजूदगी में जाकर देखी जाए, तो कोई बहुत बड़ी कामयाब ज़िंदगी नहीं दिखती। इंसान की निगाह से देखा जाए जो एक सतहियत पे जीना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उस पर पूरे ही नहीं उतरते। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि आज उनके जाने के बाद भी उनके नाम पर इतना कुछ क्यों है। इसलिए कि अल्लाह की ये बात सच्ची है, वम ममा यन फोन ना सफ़यम कुसुफिल अर्दी, जो लोगों को नफ़ा देगा वो बचेगा। अब होता क्या है कि जब हम दीन सीख लेते हैं, और मेरा इस वक्त सारा का सारा फोकस अपने समेत उन तमाम साथियों पे है जो दीन को सीखने के बाद सिखाने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ करके जाने की तमन्ना होती है, क्योंकि कुरान पाक इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी भर देता है कि उसके बाद फिर इंसान फारिग नहीं रह सकता। वो ये नहीं कहता कि मेरे घर के काम हो गए, आप कहते नहीं मेरी गली के, फिर मेरे शहर वालों के, फिर मेरे मुल्क के, और फिर इस दुनिया के। यानी वो अपने कामों के साथ साथ दूसरों के काम भी करता है, और उसके बाद फिर जब दीन से ताल्लुक आता है तो कुरान और सुन्नत और किताबें, ये तो लाजमा है इन चीज़ों का। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक बहुत बड़ी गलती जो होती है इसके बाद, जिस पे मैंने सैकड़ों लोग, कह सकती हूँ मुबालगा ना भी करूँ हज़ारों, तो सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद मैंने जो चीज़ महसूस की है कि कुरान हमारे अंदर की खैर को बाहर ले आता है, हमारे अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर ले आता है। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि क्या करूं, और फिर उससे भी कम को पता होता है कैसे करूं, और उससे भी कम को पता होता है किधर जाना है, करके करना क्या है। तो दुनिया में कुछ सवालात बहुत ही कसरत से सोचे और पूछे जाते हैं। छोटा बच्चा भी पूछता है, मामा हम कौन हैं, मामा हम कहाँ से आए, मामा मेरी ज़िंदगी क्यों है, मामा आप कहाँ से आई, बाबा कहाँ से आए, फिर हम सब मिल कैसे गए। यानी जिसको आज भी कह दीजिए कि पढ़ी लिखी दुनिया में जिसको वो बहुत ही बड़ा स्टेप कह सकते हैं वो अपने बारे में, तो आज की इस नशिस्त में हम इंशाल्लाह स्टेप्स देखेंगे हाउ कैन वी डिस्कवर आवर सेल्व्स। क्योंकि हम बस दफ़ा नेकी के जज्बों में चूर होने के बाद कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करने आते। हम सारी ज़िंदगी भी कोशिश करते रहे तो हम वो काम कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक शाकिला बनाया है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला कहते हैं वकुल्लि यामलु अला शाकिलती। शाकिला फ़र्क है, अबू बकर अबू बकर थे, उमर उमर थे। अबू बकर पूरी कोशिश भी करते तो उमर नहीं बन सकते थे, और उमर फारूक को सारी ज़िंदगी बिठाकर दर्स सुनाए जाएं कि आप अबू बकर जैसे बन जाएं, शख्सियत ऐसी हो जाए, आपकी सोच ऐसी हो जाए, वो नहीं हो सकते थे। उस्मान उस्मान थे, अली अली थे, और अली अबू बकर नहीं बन सकते, और अबू बकर अली नहीं बन सकते थे। हर एक को अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट माइंडसेट दिया होता है। होता क्या है कि जब हम ये सोचते हैं या हमारे दिल में ये बात डल जाती है कि मुझे लोगों को नफ़ा देना है क्योंकि मैं ही बचूंगी, और हर एक बचना चाहता है, याद रखिए अपनी तबीयत के एतबार से इंसान दुनिया से फना नहीं होना चाहता। हमारे कल्चर में अमूमन बच्चे की दुआ क्यों की जाती है, इसके बाद इसका कोई नाम ले ले। और क्यों मांगते हैं औलाद, हमारी जायदादें उनके नाम लग जाएं, और क्यों मांगते हैं, कहते हैं कोई तो इसकी नस्ल चले ना। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए जाते थे ना, नासमझ लोगों की तरफ से कि आपकी औलाद नहीं है तो आपका तो नाम ही नहीं बचना, अल्लाह ताला कहते हैं वल असर के बाद इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आप क्यों गम करते हैं, लोग तो अपनी औलादों के जोम में मुबतला हैं। वलीद बिन मुगीरा को देख लीजिए, और अबू लहब को देख लीजिए, अबू जहल को देखिए, और ये अब्दुल्ला बिन उबई जैसे लोग, ये तो अपनी कामयाबी अपनी दौलत और अपनी औलाद को समझते हैं, लेकिन आपको तो हमने कौसर दे दी। और कौसर क्या है, खैर कसीर है, हमने आपको वो चीज़ दे दी है कि जिसको पाने के बाद आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मेरा नाम कैसे बाकी रहेगा, मेरा मामला कैसे होगा, तो फिर फिक्र लग जाती है कि मैं कुछ करूं और वो कबूल ना हो, ज़ाया हो जाए, रिजेक्टेड हो, रद्दी की टोकरी में डाल दी जाए आपकी पूरी बनी हुई वर्कशीट और आपकी रिपोर्ट, तो क्या काम आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि जब हम दुनिया में कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं तो बस दफ़ा हमें पता नहीं होता हम क्या करें, और बाज़ लोग बहुत सारी ख्वाहिशात रखने के बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, और इसी तरह आने वाले वक्त में उनकी कोशिश ज़ाया हो जाती हैं। जैसे रेत पे अपने ही कदमों के निशान, जब आप उस पे वापस पलटें तो वो मिटने लगते हैं। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम जो मुझे आपको करना है वो है डिस्कवर योर सेल्फ। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी किस रुख पे जाएगी तो फ़ायदा मंद होगी। देखिए ना, जब बाप माल औलाद और बच्चे जिनकी मैं बात कर रही हूँ इसमें किसी को कामयाब देखें और आप सोचें कि चलो ये है कामयाब बंदा, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। तो आप याद रखिए कि तब्बत यदा अबी लहबे व तब मा अगनान हो मालू व मां कसब, ना तो इसके कमाई उसके काम आई ना इसकी औलाद काम आई, कामयाब तो नहीं था ना। फिरौन को देख लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि बड़ा ओहदा मिल जाए ज़िंदगी में तो हम बड़े कामयाब हैं, तो फिरौन और हामान को देख लीजिए, दौलत के अंबार लग जाए, करोड़पतियों में शादी हो जाए बेटी की, तो क्या वो कामयाब है? नहीं। कारून की मिसाल आपके सामने है, और अच्छे अच्छे लोग भी जो बहुत माल छोड़ कर गए, अगर उस माल को ज़िंदगी में कोई अच्छे कामों में नहीं लगाया तो कोई इनकी वजह ना बन सकी। तो इसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाना कि जिसके बाद आपकी वजह से दूसरे फ़ायदा उठाएं, ये है वो दर्द जिसके ऊपर आपने मैंने कोशिश करनी है, और फिर ये देखना है कि मैं उसमें फिट कहाँ होती हूँ। ये जो आयत आपके सामने है, अगर आप इसको सबीलुल जन्ना या रूहुल कुरान या नूरुल कुरान 13 तफसीर, ये तीन ही बोल देती हूँ, आप इनमें से किसी में जाकर सूरत रात की आयत पढ़नी शुरू करें और सुन लीजिए, चलिए तो आपको मिसाल समझ आ जाएगी। मैं इस मिसाल पे आपका दिमाग लाकर आगे इंशाल्लाह कुछ स्टेप्स दूंगी कि हम खुद को कैसे समझें। स्टेप्स हैं लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमें आगे जाने से पहले। आप देखिए कि एक मिसाल लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? आपका दिल करता है कि मैं वो करूँ जो मेरे उस्ताद करते हैं। मसलन देखिए ना, मैंने किसी से पढ़ा तो मेरी नज़र में कामयाब कौन है कि उस्ताद? अब मैं कहती हूँ कि मेरे लिए कामयाब होने का एक ही तरीका कि मैं उस्ताद बन जाऊँ। लिख लीजिए, कोई बुरी बात नहीं, हर चीज़ लिखे, मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स में दूंगी बात। चलिए आप उस्ताद बन गई, अब आप इमेजिनेशन में लाइए गाड़ी। गाड़ी किन किन चीज़ों से मिलके बनती है? मसलन आप देखिए कि चाबी, फिर एक पूरी फिजिकल गाड़ी, फिर उसके अंदर क्लच है, ब्रेक है, हैंड गियर है, और भी चीज़ें आप जानते हैं, विंडस्क्रीन है, बैक मिरर है, इसी तरह सीट्स भी होती हैं, कोई 5 सीटर हैं तो कोई 7 सीटर्स हैं, ठीक है? तसव्वुर में लाइए, ये गाड़ी बजाते खुद गाड़ी है, लेकिन अगर आप किसी मैकेनिक के पास इसको ले जाएं और वो इसके एक एक पुर्जे को खोल के रख दे, बस ये जितने नाम मैंने भी लिए ये सारों को अलग अलग कर दीजिए, क्या हर पुर्जा अपनी जगह बैठा हुआ गाड़ी कहलाएगा? नहीं होगा ना। आप स्टेयरिंग को पकड़ें और पूछें ये क्या है, तो जो बहुत ही माहिर है ना गाड़ियों के पुर्जों का, मैकेनिक, इंजीनियर या गाड़ी बनाने वाली कोई भी कंपनी कुछ भी, तो वो कहेगी कि ये गियर है, ये फलां है, ये फलां चीज़ है, ये व्हील है, ये वो कहेगा कि मुझे चलाना है, वो कहेगा अगर चलाना है ना वापस इन सारे पुर्जों को गाड़ी में डालो, यानी जिसको कहते हैं रीअसेंबल करो, और फिर एक ख़ास तरीके से इसको चाबी लगाओगे तो ये चल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि ये कायनात बोल बोल कर आपको मुझे ये सबक दे रही है कि वाम ममा यनफो नासुफ यमकुस, जो लोगों को नफ़ा देता है वो बचता है, और ऐसी चीज़ों में हम तीन मिसालें ले लेते हैं ताकि आपको मुझे कायनात का ये साइकिल समझ आए, और फिर हम देखें कि मैं एक उस्ताद बनकर कामयाब हो सकती हूँ। उस्ताद को आप ड्राइवर कह लीजिए, चलिए ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करने लगा, गाड़ी को आप इस वक्त तसव्वुर में लाइए, दीन की गाड़ी, आप लोगों की खैर का काम करना चाहते हैं, उस गाड़ी में लोगों को इधर से उठाकर जन्नत में ले जाना चाहते हैं, रोड टू जन्ना सबीलुल जन्ना पे ये गाड़ी चलानी है। अब आपका दिल है कि लोग बेचारे परेशान हैं, मैं गाड़ी ऑफर करती हूँ और ये सब सीधे जाएंगे, क्या आप सिर्फ ड्राइवर होने के नाते वो गाड़ी रन कर लेंगी? और आप भी हैं, गाड़ी भी है, लेकिन अंदर छोटे छोटे पुर्जे नहीं हैं, तो क्या आप गाड़ी चला सकेंगी? बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि बाहर लोगों को एक उस्ताद दिखता है, नाम भी लोग उसी का लेते देते हैं, शक्ल भी सामने उसी की दिखती है, कोई आवाज़ सुनता है तो आवाज़ भी उसी की होती है, इससे कुछ लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है, और वो क्या कि मैं माइक पे आकर पढ़ाने लग गई, मैं माइक होल्डर बन गई, मैं माइक पे आकर तजवीद कराने लग गई, मैं माइक पे आके ग्रामर सिखाने लग गई, और इसी तरह 5-6 और फील्ड्स ले लीजिए, चाहे तो दुनियावी सब्जेक्ट्स ले लीजिए, कि मैं मैथ पढ़ाने लग गई, जोलॉजी और बायोलॉजी, तो बस मैं कामयाब हूँ। हालांकि आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि पीछे एक पूरा सेटअप होता है, कहाँ गाड़ी बनी, कहाँ पुर्जे लगे, फिर उसको रोड पे आने से पहले कुछ पेपर वर्क्स लेने की ज़रूरत पड़ी। एक गाड़ी सिर्फ एक ड्राइवर से नहीं चलती, या अगर आप कह लीजिए कि स्टेयरिंग बोलता है कि सारा काम तो मैं करता हूँ, देखो ना इतना बड़ा हूँ, गोद में रख के बैठा था ड्राइवर मुझे, इधर घुमाओ तो गाड़ी इधर घूम गई, इधर घुमाओ तो इधर घूम गई, और यही ये दावा करने लग जाए नीचे से क्लच कि नहीं भाई तुम क्या करते हो, असल तो मैं काम करता हूँ। देखो ना, मेरे ऊपर पाँव मारते जाओ और मेरी से स्पीड तेज कराते जाओ। ब्रेक कहती है, तुम्हें क्या पता, तुम तो हलाकत की तरफ जा रहे थे। ये मैं थी जिसने वो आगे गड़ाया ना, तो तुम्हें मरने से और गिरने से रोक लिया। मैं थी जिसने तुम्हें हर खतरे के वक्त पे पीछे कर दिया। चलिए, आप अभी इन तीन के झगड़े निपटाने की पूरी कोशिशों में थे, तो इतने में एक आवाज़ आ गई पहियों से, व्हील्स। लोग कमाल करते हो, अगर मैं ना होते तो तुम सारे मेरे बगैर गाड़ी चलाते। बात समझ आ गई। सब चीज़ें मिलती हैं तो गाड़ी बनती है। याद रखिए, दुनिया में जिस कायनात की चीज़ को देखें, बहुत सारी चीज़ों के कोऑपरेशन, जिसको आप टीम वर्क कह सकते हैं, जिसको आप हार्मनी कह सकते हैं, जिनको आप मकसद की सिमिलरिटी, यानी असिमिलेट होना एक मकसद के साथ, और फिर वही बात है कि उसके पीछे जुड़ जाना, इसको जानते हैं। मतलब बादल, आज थोड़ी बहुत साइंस मैंने भी पढ़ी है और आप सबने तो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। आप देखिए कि बादल समंदरों के ऊपर से उठते हैं ना, और अगर वो सारा सिस्टम जो आपने किसी अपनी साइंस की बुक में पढ़ा, उसमें से कुछ जुमले ही रिवाइज कर लीजिए, तो आप देख लेंगे कि कैसे बुखारात उठते हैं, वेपोरेट होता है पानी, फिर वो कैसे इकट्ठा होता है, फिर ऊपर जाके कंडेंसिंग होती है, फिर बादल गाढ़े होते हैं, फिर हवाएं उनको लेके चलती हैं, फिर किसी मुर्दा ज़मीन पे जाके बरसाती है ना। तो बादलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और ये सारा सूरत नूर में अल्लाह ने प्रोसीजर दिया हुआ है। अल्लाह नूर समावा 30 आयतें, उससे अगली चंद आयतों के बाद यह मिसाल आपको मिल जाएगी। तो कायनात को बादलों की सी खूबसूरतियाँ देने के लिए जब कायनात की कितनी चीज़ें मिली तो बादल बने। अगर ज़मीन का खुदा कोई और होता, आसमान का कोई और होता, तो दोनों लड़ते रहते। समंदर पानी से वह कतरे ले ले के ऊपर भेज रहा है, ऊपर वाला कहता है अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं सोना है, अभी नहीं करना, तो फिर वो बीच में ही पड़ी पड़ी रहेंगी, या ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि वो जो बारिश होनी थी वो समंदरों पर बरसेगी। हवाएं इनकार कर दें, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं काम कर सकती, तो फिर वो पानी जो हवाओं के जरिए मुर्दा ज़मीनों पर जाना था और वहाँ बरसना था, वो समंदरों पर बरस के और तो क्या नहीं ले आएगा। तो क्या पता चला कि ये कायनात बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के और मुख्तलिफ चीज़ों के मिलकर काम करने के बाद कोई भी काम कर पाती है। अब जब आपको मैंने गाड़ी की मिसाल दी है, तो आपका मेरा आज का टॉपिक क्या है? मैं क्या हूँ? आप इमेजिनेशन में एक गाड़ी बनाइए, ऐसी बना लें छोटी सी, बच्चों की जो होती हैं, और इसके आगे लिखिए नफ़ेमंद गाड़ी या दीन की गाड़ी। मुझे तो ये लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी इसको हर एक अपने ऊपर लेके सोच ले। दीन की गाड़ी ये है जिसमें सवार करके लोगों को कहीं ले जाया जाएगा। मैं इस गाड़ी में क्या हूँ? डिस्कवर योर सेल्फ, अपनी तलाश। हम गूगल पे जाके कई की चीज़ें तलाश कर लेते हैं, सर्च इंजन हमारे इतने स्ट्रांग हो गए, हम एक लफ्ज़ डालते हैं हदीस की, किताबों की किताबें फाइंड आउट हो जाती हैं, हम एक रूट वर्ड डालते हैं कुरान की सारी आयतें खुल जाती हैं। आज के इंसान का सर्च इंजन इवन किताबों, बुक्स और इल्मी चीज़ों के लिए भी बहुत स्ट्रांग हो गया। वो इल्म जिसको लेने के लिए सहाबे कराम मीलों सफ़र करते थे, पैदल चलते थे, जूतियाँ फट जाती थीं, इमाम बुखारी के जूते फट गए, कपड़े बेच दिए, वो इल्म आपको मुझे आज अपनी टेबल चेयर पे बैठे खूबसूरत स्क्रीनों के ज़रिए मिलता है। आसान है। चलिए, इंसान खो जाते हैं, पहले दौर में लोग खो जाते थे, फ़ोन करो, ढूंढो, थाने में जाओ, पुलिस में जाओ। आज फेसबुक पे जाकर आप उस बंदे का नाम पता डालें, दुनिया में कहीं भी होगा उसका नाम पता निकल आएगा। आज ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया, आपके कितने बचपन के दोस्त साथी आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, लेकिन जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से आपकी मेरी बहुत कम मुलाकात होती है, वो हम खुद हैं। जी, बात की थी कि एक इंसान के तीन आईने होते हैं। चेहरा तो हम शायद आईने में देखते हैं ना, लेकिन रियल में हम क्या हैं? तीन मुख्तलिफ आईने, एक तो हमारे दोस्त, हमारे दोस्तों को देखकर कोई पहचान लेगा कि हम कैसे हैं। और एक बड़ा नॉर्मल सा लिबरल सा रूल है कि इंसान अपने दोस्तों का एवरेज होता है। मिसाल देती हूँ कि आपकी 10 दोस्त हैं, 10 के ईमान का लेवल फ़र्क है। एक 80% ईमान वाली हैं, कोई 70 हैं, कोई 90 हैं, कोई 50 हैं, कोई 40 हैं। आपका मेरा ईमान इन सारों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो उसका 10वां हिस्सा होगा, एवरेज है। क्योंकि अल्लाह के नबी की बात है, मैं तो कह नहीं सकती कि अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। जैसे हम होते हैं ना, हम वैसे ही लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। तो लिहाजा आपने मैंने खुद को पहचानना है, तो हमें अपनी दोस्तों के आईने में देखना पड़ेगा कि मेरी दोस्तें जैसी हैं, फिर मैं भी ऐसी होंगी। देखिए, या तो दोस्ती नहीं रहती, तो ये आप बदल चुके होते हैं, क्योंकि बंदा या रंग दे देता है या ले लेता है। आप फिरोजी रंग के दुपट्टे को गीला कर कर किसी कपड़े पर रखें, अगर वो सफ़ेद है ना तो वो सफ़ेद कपड़े के ऊपर फिरोजी का रंग चढ़ चुका होगा, और अगर काले कपड़े पर रखेंगे ना तो आपके फिरोजी दुपट्टे पे काले धब्बे पड़ चुके होंगे। तो दोस्तियां बहुत अहम होती हैं इंसान को पहचानने की। इस आईने में आप पहचान लेते हैं, आप कहते हैं मेरी तो कोई दोस्ती नहीं और हरी तरह की है, ये आईना तो मेरे पे काम नहीं आ सकता। ठीक है, मान लीजिए एक साइड पे करते हैं। दूसरा आईना आपके दुश्मन, मुखालिफ, हासिदीन, नाकेदीन, आपसे तकाबुल रखने वाले, हम पेशा दुश्मन हमेशा, आप उनके आईने में भी अपने आप को बड़ा देखेंगे। वो तो आपकी वो चीज़ें खोल खोल कर दिखाएंगे कि शायद आपकी सगी माँ को ना पैदा करने के बावजूद पता चली हो, क्योंकि वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वो आपकी हर गलती चुनेंगे। और बल्कि एडिटिंग का काम कराना ही मुखालिफों से चाहिए, घंटे की ऑडियो 20 मिनट में रह जाएगी इंशाल्लाह। चले अच्छा है, लोगों को भी ना लंबी लगी। लेकिन दुश्मन, मुखालिफ, इसमें फिर हमारे वो सारे नेगेटिव रिश्ते आते हैं जो हमसे तकाबुल करते हैं, या वो हमसे हसद करते हैं, या हमें वो अच्छे नहीं लगते। तो ये भी एक आईना होता है जिसके अंदर से भी बंदा अपने आप को पहचान लेता है। लेकिन हम मानते हैं कि इधर नेगेटिविटी है, वो एग्जेजरेट करेंगे। एक तीसरा आईना जिससे मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊंगी, जिन्होंने सुना वह सेशन अपने नोट्स में खुद ही लिख लें, और नहीं सुना जिन्होंने कोई बात नहीं, बाद में सुन लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिए। तीसरा आईना जिसमें मैं और अपनी शख्सियत को ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, क्या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्या मैं कामयाब इंसान हूँ, मैं नहीं हूँ, वो है नतायज, रिजल्ट्स। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसके नतायज क्या निकलते हैं बस। और अल्लाह के नबी के हदीस यहाँ नोट कर लीजिए कि अल अमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार उनके खात्मों पे है। चलें घरेलू खवातीन है ना, तो वही मिसालें लीजिए। आप कहते हैं सुबह से किचन में हूँ, चलिए बिरयानी बनाई, आज तो कमर टूट गई। अब आप कहते हैं ये डाला वो डाला, इतनी मेहनत, इतना कुछ। वो कहते हैं लाइए ना ज़रा चखाइए तो सही। आपके सामने प्लेट या डिश में बिरयानी और चम्मच और जो कुछ भी आप रखते हैं रख दिया गया, बिस्मिल्लाह कीजिए। पहला लुकमा ही खाते आपको ऐसे लगा जैसे ज़ुबान खिंच गई, ओहो नमक बड़ा तेज़ है, लौंग का टेस्ट बहुत है, और मिर्च अल्लाह की बना। मुझे बताइए आपने 5 घंटे लगाकर बिरयानी पकाई या 15 मिनट में पकाई, अगले को क्या लगे? वो कहेगा किया क्या है, पकाया क्या है, बस सारा किचन फैला के फिरती रहती हैं, फिरती रहती हैं। मियाँ कहते हैं क्या हो रहा है भाई, वो रात के खाने की दावत की तैयारी है। भाई अभी मेरा नाश्ता भी बनाया कि नहीं बनाया? उसको क्या लगे कि आप 2 दिन बाद की दावत के लिए प्याज फ्राई कर रही हैं और ये वो इटी बीटी सी कर रही हैं, उसको तो आज चाहिए। याद रखिए इसी तरह हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर ले लूँ आप अपने पे ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में करना क्या क्या, तो उसका अंजाम कैसा है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस काम को करके, आप कितना आराम की नींद सोते हैं कि मेरी आज सारे दिन की कोशिशों के नतीजे में ये चीज़ प्रोड्यूस हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है। तो जब आप अपने आप को एक माँ होने के नाते देख लीजिए, कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कैसी उनकी तरबियत हो रही है। आप एक घर चलाती हैं, होम इकोनॉमिक्स, पहले दौर का बड़ा खूबसूरत नाम था, आज तो घूम ही गया बच्चियों की लिस्टों में से, इकोनॉमिक्स नहीं आती, होम रह गया तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रह गई पीछे। चलिए घर कैसा चला रही हैं, बींगा बहू, मेरे इन लॉज मेरे बारे में क्या कहते हैं, लिखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कामयाब इंसान हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, हम इन सारी नाकामियों को कामयाबियों में नहीं बदल सकते। आप एक टीचर हैं, कैसी टीचर हैं? देखिए हर स्टूडेंट को अपना टीचर बड़ा अच्छा लगता है, ये भी याद रखिएगा। ये तो देखिए कि आप किन की स्टूडेंट हैं, वो क्या बने हैं, निकम्मों की टीचर बन के आपने क्या कमा लिया। आप कहते हैं कि मैं एक सियासतदान हूँ, माशाल्लाह एक साइन पे मेरे इतने काम होते हैं, आपकी इज्जत क्या है? तो समझ में बात आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अपने आप को देखना है। देखिए हम चाहते हैं कि हम दूसरों के दर्द की दवा बने, क्यों? इसलिए कि इंसान दुनिया में सबसे बड़ी दवा है, दुनिया का सबसे बड़ा दारू इंसान है, दवाई नहीं है। ये डिस्प्रिन कुछ नहीं करती और इसी तरह एस्प्रिन भी कुछ नहीं करती, वो बंदा जो उसको आपको खिलाता है बड़े प्यार से और साथ दुआएं भी करता है ना, उसकी बरकत से अल्लाह शिफा दे देता है। तो आप और मैं कितने को खुद शनास हैं, आप कहते हैं मैं क्या हूँ, कई लोग कहते हैं मैं समझ नहीं आता, मैं आज तक खुद को नहीं समझ सकी, मैं बड़ी मुतलवन मिजाज हूँ, यानी मुतलवन लॉन से है ना, रंग बिरंगी, पल में तोला पर में माशा। एक छोटा सा क्राइटेरियन रखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप क्या हैं। مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیتے ہیں ہم اپنی مثال کے لیے، کیونکہ ہم زیادہ زیادہ صدیقیت کے مقام پہ کامیاب ہوں گے، اور اگر اس سے اوپر لینا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے لوگ کہتے تھے، بلکہ آپ کی ہمسائی، دوسرا رشتہ چچی، بالکل ساتھ والی، اور وہ کہتی تھی انت مزمم مزمم فینا، شیر عربوں کے جا کے دیکھیے، ہمارے بیچ میں مزمم آیا ہوا ہے، مزمم ہے، مزمم ہے، نعوذ باللہ. تو جب اللہ کے نبی تک یہ جملے پہنچتے تو آپ کیا کہتے، پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہی ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتہ چلا، یہ ہے خود شناسی، لکھے گا اگر آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے آپ محمودہ ہیں، اپنے آپ کو مونس کے صیغے پہ لے لیجئے، آپ کو جب پتہ ہے نا کہ میں اچھی ہوں، میں غلط نہیں، ساری دنیا آپ کو برا کہے آپ غصے میں نہیں آئیں گے. تو لکھیے، خود شناس بندے کو دوسرے کی گالی پر غصہ نہیں آتا، ساس ہو، بچے ہوں، شوہر ہو، بیوی ہو، دین کے ساتھ کام کرنے والے، آپ سے فائدہ لینے دینے والے، ساری دنیا آپ کو کہے نا آپ غلط، آپ بری، آپ ایسی، آپ خود اندر جھانکتے ہیں، استفتح قلبک والی کیفیت میں آتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اندر ایک سکون ہے. اور خود شناسی میں اگر آپ کو اندر سکون کی دولت مل گئی نا، تو بس پھر آگے لیکچر نہ سنیں آپ، فائدہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں آپ کو، جبکہ آپ صحت مند ہیں، نیگیٹو ہیں آپ کے اندر سے سارے وائرسز، تو دوا کیوں کھائیں. لیکن اگر آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، آپ کی بھویں تن جاتی ہیں، ماتھے پہ تیوری آتی ہے، میں نہیں کرتی، میں نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو مان لیجئے کہ یا تو پھر آپ اندر سے کھوٹے ہیں، پھر آپ محمد نہیں مزمم کی مثال پہ، معذرت کے ساتھ، پھر تو واقعی آپ کو کان لگا کر بیٹھ کے کاغذ قلم کے ساتھ سننا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ واقعی اپنی فیلڈ میں اپنی سی محنت کر چکے ہیں، کمپیٹنسی کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرتے ہیں. اور وہ جملہ شاید بیسیوں بار تو میرے سے اور کئیوں سے سنا ہوگا آپ نے، ایک بار اور سن لیجئے، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. تو خود شناسی کا یہ سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہے.